संबंध। अब भगवान आगे के दो श्लोकों में कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखने वाले अर्थात कर्मों का तत्व जानने वाले सिद्ध कर्मयोगी महापुरुष का वर्णन करते हैं।
यस्य सर्वे समारम्भा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणां तमाहु पंडितां बुधा।
19वां श्लोक। जिसके संपूर्ण कर्मों के आरंभ संकल्प और कामना से रहित हैं तथा जिसके संपूर्ण कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से जल गए हैं उसको ज्ञानी जन भी पंडित बुद्धिमान कहते हैं। व्याख्या।
यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः।
इस पर एक टिप्पणी। जहाँ दोनों पदों का अर्थ प्रधान होता है वहाँ द्वंद्व समास होता है। यहाँ संकल्प और काम दोनों शब्द अपने अपने अर्थ में प्रधान हैं। अतः यहाँ संकल्पाश्च कामाश्च ऐसा द्वंद्व समास होने से संकल्प कामः ऐसा रूप बना। परंतु द्वंद्व समास के जिस पद में कम स्वर होते हैं उसका पूर्व प्रयोग होता है। यहाँ भी काम शब्द में कम स्वर होने से उसका पूर्व प्रयोग हुआ है। अतः काम संकल्पः ऐसा रूप बना। अब काम संकल्पैः वर्जितः ऐसा तृतीया समास करने पर पूरा पद काम संकल्प वर्जितः बना।
यस्य सर्वे समारंभः काम संकल्प वर्जितः।
विषयों का बार बार चिंतन होने से उनकी बार बार याद आने से उन विषयों में ये विषय अच्छे हैं काम में आने वाले हैं जीवन में उपयोगी हैं और सुख देने वाले हैं ऐसी सम्यक बुद्धि का होना संकल्प है। और ये विषय पदार्थ हमारे लिए अच्छे नहीं हैं हानिकारक हैं ऐसी बुद्धि का होना विकल्प है। ऐसे संकल्प और विकल्प बुद्धि में होते रहते हैं। जब विकल्प मिटकर केवल एक संकल्प रह जाता है तब ये विषय पदार्थ हमें मिलने चाहिए ये हमारे होने चाहिए इस तरह अंतःकरण में उनको प्राप्त करने की जो इच्छा पैदा हो जाती है उसका नाम काम कामना है। कर्मयोग से सिद्ध हुए महापुरुष में संकल्प और कामना दोनों ही नहीं रहते। अर्थात उसमें न तो कामनाओं का कारण संकल्प रहता है और न संकल्पों का कार्य कामना ही रहती है। अतः उसके द्वारा जो भी कर्म होते हैं वे सब संकल्प और कामना से रहित होते हैं। संकल्प और कामना ये दोनों कर्म के बीज हैं। संकल्प और कामना न रहने पर कर्म अकर्म हो जाते हैं अर्थात कर्म बांधने वाले नहीं होते। सिद्ध महापुरुष में भी संकल्प और कामना न रहने से उसके द्वारा होने वाले कर्म बंधन कारक नहीं होते। उसके द्वारा लोक संग्रहार्थ कर्तव्य परंपरा सुरक्षार्थ संपूर्ण कर्म होते हुए भी वह उन कर्मों से स्वतः सर्वथा निर्लिप्त रहता है। भगवान ने कहीं पर संकल्पों का कहीं पर कामनाओं का और कहीं पर संकल्प तथा कामना दोनों का त्याग बताया है। अतः जहाँ केवल संकल्पों का त्याग बताया गया है वहाँ कामनाओं का और जहाँ केवल कामनाओं का त्याग बताया गया है वहाँ संकल्पों का त्याग भी समझ लेना चाहिए। क्योंकि संकल्प कामनाओं का कारण है और कामना संकल्पों का कार्य है। तात्पर्य है कि साधक को संपूर्ण संकल्पों और कामनाओं का त्याग कर देना चाहिए। मोटर की चार अवस्थाएं होती हैं। पहली, मोटर गैरेज में खड़ी रहने पर न इंजन चलता है और न पहिए चलते हैं। दूसरी, मोटर चालू करने पर इंजन तो चलने लगता है पर पहिए नहीं चलते। तीसरी, मोटर को वहां से रवाना करने पर इंजन भी चलता है और पहिए भी चलते हैं। और चौथी, निरापद ढलवा मार्ग आने पर इंजन को बंद कर देते हैं और पहिए चलते रहते हैं। इसी प्रकार मनुष्य की भी चार अवस्थाएं होती हैं। पहली, न कामना होती है और न कर्म होता है। दूसरी, कामना होती है पर कर्म नहीं होता। तीसरी, कामना भी होती है और कर्म भी होता है। तथा चौथी, कामना नहीं होती और कर्म होता है। मोटर की सबसे उत्तम चौथी अवस्था यह है कि इंजन न चले और पहिए चलते रहें, अर्थात तेल भी खर्च न हो और रास्ता भी तय हो जाए। इसी तरह मनुष्य की सबसे उत्तम अवस्था यह है कि कामना न हो और कर्म होते रहें। ऐसी अवस्था वाले मनुष्य को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। समारंभः, इस पर एक टिप्पणी है। यहाँ समारंभः पद सिद्ध कर्मयोगी की राग द्वेष रहित सांगोपांग प्रवृत्ति का वाचक है। 14वें अध्याय के 12वें श्लोक में आए हुए आरंभ पद का वाचक नहीं है, कारण कि वहां प्रवृत्ति और आरंभ ये दो शब्द आए हैं। अतः वहां कर्तव्य कर्म को करना प्रवृत्ति है तथा भोग और संग्रह के उद्देश्य से नए नए कर्मों को शुरू करना आरंभ है। समारंभः पद का यह भाव है कि कर्मयोग से सिद्ध महापुरुष के द्वारा हरेक कर्म सुचारू रूप से सांगोपांग और तत्परता पूर्वक होता है। दूसरा एक भाव यह भी है कि उसके कर्म शास्त्र सम्मत होते हैं, उसके द्वारा करने योग्य कर्म ही होते हैं। जिससे किसी का अहित होता हो वह कर्म उससे कभी नहीं होता। सर्वे पद का यह भाव है कि उसके द्वारा होने वाले सब के सब कर्म संकल्प और कामना से रहित होते हैं। कोई सा भी कर्म संकल्प सहित नहीं होता। प्रातः उठने से लेकर रात में सोने तक शौच स्नान, खाना पीना, पाठ पूजा, जप चिंतन, ध्यान समाधि आदि शरीर निर्वाह संबंधी संपूर्ण कर्म संकल्प और कामना से रहित ही होते हैं। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, कर्मों का संबंध पर के साथ है, अर्थात शरीर संसार के साथ है, स्व के साथ नहीं, यानी स्वरूप के साथ नहीं। क्योंकि कर्मों का आरंभ और अंत होता है पर स्वरूप सदा ज्यों का त्यों रहता है। इस तत्व को ठीक ठीक जानना ही ज्ञान है। इस ज्ञान रूप अग्नि से संपूर्ण कर्म भस्म हो जाते हैं, अर्थात कर्मों में फल देने की बांधने की शक्ति नहीं रहती। वास्तव में शरीर और क्रिया दोनों संसार से अभिन्न हैं, पर स्वयं सर्वथा भिन्न होता हुआ भी भूल से इनके साथ अपना संबंध मान लेता है। जब महापुरुष का अपने कहलाने वाले शरीर के साथ भी कोई संबंध नहीं रहता, तब जैसे संसार मात्र से सब कर्म होते हैं, ऐसे ही उसके कहलाने वाले शरीर से सब कर्म होते हैं। इस प्रकार कर्मों से निर्लिप्तता का अनुभव होने पर उस महापुरुष के वर्तमान कर्म ही नष्ट नहीं होते, प्रत्युत संचित कर्म भी सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। प्रारब्ध कर्म भी केवल अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति के रूप में उसके सामने आकर नष्ट हो जाते हैं, परंतु फल से असंग होने के कारण वह उनका भोक्ता नहीं बनता, अर्थात किंचन मात्र भी सुखी या दुखी नहीं होता। इसलिए प्रारब्ध कर्म भी अस्थाई परिस्थिति मात्र उत्पन्न करके नष्ट हो जाते हैं। तमाहुः पंडितं बुधः, जो कर्मों का स्वरूप से त्याग करके परमात्मा में लगा हुआ है उस मनुष्य को समझना तो सुगम है, पर जो कर्मों से किंचन मात्र भी लिप्त हुए बिना तत्परता पूर्वक कर्म कर रहा है उसे समझना कठिन है। संतों की वाणी में आया है, त्यागी शोभा जगत में करता है सब कोई, हरिया गृहस्थी संत का भेदी बिरला होई। तात्पर्य यह है कि संसार में बाहर से त्याग करने वाले त्यागी पुरुष की महिमा तो सब गाते हैं, पर गृहस्थ में रहकर सब कर्तव्य कर्म करते हुए भी जो निर्लिप्त रहता है, उस भीतर का त्याग करने वाले पुरुष को समझने वाला कोई बिरला ही होता है। जैसे कमल का पत्ता जल में ही उत्पन्न होकर और जल में रहते हुए भी जल से लिप्त नहीं होता, ऐसे ही कर्मयोगी कर्मयोनि में ही अर्थात मनुष्य शरीर में ही उत्पन्न होकर और कर्ममय जगत में रहकर कर्म करते हुए भी कर्मों से लिप्त नहीं होता। इस पर एक टिप्पणी,
निवृत्तेरपि मूढस्य प्रवृत्तेरुपजायते, प्रवृत्तेरपि धीरस्य निवृत्ते फलदायिनी।
अष्टावक्र गीता में आया है, मूढ़ पुरुष की निवृत्ति भी प्रवृत्ति को उत्पन्न करने वाली होती है और ज्ञानी पुरुष की प्रवृत्ति भी निवृत्ति रूप फल को देने वाली होती है। कर्मों से लिप्त न होना कोई साधारण बुद्धिमानी का काम नहीं है। पीछे के 18वें श्लोक में भगवान ने ऐसे कर्मयोगी को मनुष्यों में बुद्धिमान कहा है और यहाँ कहा है कि उसे ज्ञानी जन भी पंडित अर्थात बुद्धिमान कहते हैं। भाव यह है कि ऐसा कर्मयोगी पंडितों का भी पंडित, ज्ञानियों का भी ज्ञानी है।
गृहेषु पंडिताः केचित् केचिन्मूर्खेषु पंडिताः, सभायां पंडिताः केचित् केचित् पंडित पंडिताः।